ये सादत हसन मंटो की लिखी हुई कहानी आखिरी सल्यूट। ये कश्मीर की लड़ाई भी अजीब और गरीब थी। सूबेदार रब नवाज का दिमाग ऐसी बंदूक बन गया था, जंग को घोड़ा खराब हो गया था। पिछली बड़ी जंग में वो कई मरीजों पर लड़ चुके थे, मरना और मारना जानता था बस सूबेदार रब नवाज। छोटे बड़े अफसरों की नज़रों में उसकी बड़ी तौकीर थी, इसलिए कि वो बड़ा बहादुर, निडर और समझदार सिपाही था। प्लाटून कमांडर मुश्किल काम हमेशा उसे ही सौंपते थे और वो उनसे औहदा बड़ा ही होता था, मगर इस लड़ाई की ढंग अलग थी। दिल में बड़ा वलवला, बड़ा जोश था। भूख प्यास से बेपरवाह सिर्फ एक ही लगन थी, दुश्मन का सफाया कर देना। मगर जब उससे सामने होते थे, उसको अपनी आंखों के सामने देखते थे, तो जानी पहचानी सूरत नजर आती थी, बहुत दोस्ती दिखाई देती थी। बड़े बगली किस्म के दोस्त जो पिछली लड़ाई में उसके दोष पर दोष इत्तेहाद के दुश्मन से लड़े थे, पर अब जान के प्यासे हुए थे। सूबेदार रबनवाज सोचता था कि ये सब ख्वाब तो नहीं। पिछली बड़ी जंग का ऐलान भर्ती कदर और छातियों के पैमाइश पीटी चांद मारी और फिर महाज, उधर से इधर, इधर से उधर, आखिरी जंग का खात्मा। फिर एकदम पाकिस्तान का क्याम और साथ ही कश्मीर की लड़ाई। ऊपर तले कितनी चीजें। रबनवाज सोचता था कि करने वाले ने ये सब कुछ सोच समझ कर किया है ताकि दूसरे बौखला जाए और समझ ना सके, वरना ये भी कोई बात थी कि कितने जल्दी इतने बड़े इनकलाब बरपा हो जाए। इतनी बात तो सूबेदार रबनवाज की समझ में आती थी कि वो कश्मीर हासिल करने के लिए लड़ रहा है। कश्मीर क्यों हासिल करना है ये वो भी नहीं जानता था। वो अच्छी तरह समझता था कि पाकिस्तान का बरका एक इलाक अस्ति ज़रूरी है, मगर निशाना बांधते हुए उसे जब कोई जानी पहचानी शक्ल नज़र आ जाती थी तो वो कुछ बौखलाया जाता था, वो सब कुछ भूल जाता था। उसे वो दुश्मन नहीं नज़र आता था, उसे वो अपना दोस्त समझता था। वो जानी पहचानी शक्ल थी। किस मकसद के लिए उसने बंदूक उठाई थी वो ये भूल जाता था। बार बार खुद को याद करना पड़ता था कि अब की वो सिर्फ तनख्वाह ज़मीन के मुरब्बो और तमगों के लिए नहीं, बल्कि अपने वतन के खातिर लड़ रहा है। ये वतन पहले भी इसका वतन था, वो इसी इलाके का रहने वाला था जो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया था। अब उसे अपने इसी हमवतन के खिलाफ लड़ना था जो कभी उसका हमसाया होता था, जिसके ख़ानदान से उसके ख़ानदान के पुश्त पुश्त के तीरना मरीसिम थे। अब इसका वतन वो था जिसका पानी तक भी उसने नहीं पिया, पर अब उसकी खातिर एकदम उसके कंधे पर बंदूक रख कर ये हुक्म दिया गया कि जाओ ये जगह जहाँ तुमने कभी अपने घर के लिए तो ईंटें भी नहीं चुनी, जिसकी हवा और जिसके पानी का मज़ा अब तक तुम्हारे मुंह में ठीक तौर पर नहीं बैठा, वो तुम्हारा वतन है। जाओ उसकी खातिर पाकिस्तान से लड़ो, उस पाकिस्तान से जिसके ऐन दिल में तुमने अब उम्र की इतने बरस गुजारे हैं। रबनवाज सोचता था कि यही दिल उन मुसलमान फौजियों का है जो हिंदुस्तान में अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए, वहाँ उनसे सब कुछ छीन लिया गया, यहाँ आकर उन्होंने फिर अपना घर खुद बसाया, यहाँ आकर उन्हें अलबत्ता कुछ नहीं मिला, हाँ लेकिन यहाँ आकर उन्हें बंदूकें ज़रूर मिली, बंदूकें उनके हाथ में थमाई थी। अब एक पाकिस्तानी था और दूसरा हिंदुस्तानी, जिनको उन्होंने पेट और इनाम और इकराम की खातिर अपना दुश्मन यकीन कर लिया था, अब वो खुद दो हिस्सों में बढ़ गए थे। उधर हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तानी फौजी थे। रबनवाज जब उनके मुतल्लिक सोचता था तो उसके दिमाग में एक अजीब गड़बड़ सी पैदा होती थी, और जब वो कश्मीर के मुतल्लिक सोचता था, पाकिस्तानी फौजी कश्मीर के लिए लड़ रहे थे या कश्मीर के मुसलमानों के लिए? अगर उन्हें कश्मीर के मुसलमानों के लिए लड़ाया जाता है तो हैदराबाद और जूनागढ़ के मुसलमान उनके लिए क्यों नहीं? और अगर ये जंग ठीक इस्लामी जंग थी तो दुनिया में दूसरे इस्लामी मुल्क है, वो इसमें हिस्सा क्यों नहीं लेते, जैसे पहले विश्व युद्ध में हुआ था? दरियाए किशन गंगा के किनारे इस सड़क के लिए जो मुजफ्फराबाद से किरण जाती है, कुछ अरसे से लड़ाई हो रही थी, अजीब और गरीब लड़ाई, रात भर गोलियों से भर जाती थी। रात को बाज़ औक़ात आसपास की पहाड़ियाँ फायरों के बजाय गंदी गंदी गालियों से गूंज उठती थी। एक मरतबा सूबेदार रबनवाज अपनी प्लाटों के जवानों के साथ शबखून मारने के लिए तैयार हो रहा था कि दूर नीचे एक खाई से गालियाँ का शोर उठने लगा, भरी भरी गालियाँ सुनाई पड़ रही थी। पहले तो वो घबरा गया, ऐसा लगता था कि बहुत से भूत मिलकर नाच रहे और ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगा रहे। वो बड़बड़ाया, खंजीर की धूम, ये क्या हो रहा है? एक जवान ने गूंजती हुई आवाज़ से मुखातिब होकर ये बड़ी गाली थी और रबनवाज से कहा, सूबेदार साहब गालियाँ दे रहे हैं, सूबेदार साहब गालियाँ दे रहे अपने माँ के यार। रबनवाज ये गालियाँ सुन रहा था जो बहुत उकसाने वाली थी, इसके जी में आए तो बजन बोल दे, मगर ऐसा करने की गलती चुनांचे वो नहीं करता, वो खामोश था। कुछ देर जवान भी चुप रहे, मगर जब पानी सर से गुज़र गया तो उन्होंने भी गला फाड़ फाड़ कर लड़खने शुरू कर दी। रबनवाज के लिए इस किस्म की लड़ाई बिल्कुल नई चीज़ थी, इसने जवानों को दो तीन मरतबा खामोश रहने के लिए कहा, मगर गालियाँ ही कुछ इस तरह थी कि गालियाँ देना बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता था। दुश्मन के सिपाही नज़र से ओझल थे। रात को तो खैर अंधेरा था, मगर वो दिन को भी नज़र नहीं आते थे, सिर्फ उनकी गालियाँ नज़र आती थी। पहाड़ी कदमों से उठती थी और पत्थरों को टुकड़ा टुकड़ा करके हवा में हल हो जाती थी। रबनवाज के प्लाटून के जवान जब इन गालियों का जवाब देते थे तो उसको ऐसा लगता था कि वो नीचे नहीं जाती, ऊपर उठ जाती है। इससे उसको खासी कोफ्त होती थी। चुनांचे उससे झुंझला कर हमला करने का हुक्म दे दिया, रबनवाज को वहाँ की पहाड़ियों में एक अजीब बात नज़र आई थी। उन पहाड़ियों में चढ़ाई की तरफ कोई पहाड़ी दरख्वात और बूटों से लदी फदी होती थी और उतराई की तरफ गंजी। कश्मीर हीतों के सर की तरह किसी की चढ़ाई का हिस्सा गंजा होता था और उतराई की तरफ दरख्त थी, दरख्त होते थे। चीज़ के लिए लंबे तनावार दरख्वात जिनके बटे हुए धाके जैसे पत्तों पर फौजी बूट फिसल फिसल जाते थे। जिस पहाड़ी पर सूबेदार रबनवाज की प्लाटून थी उसकी उतराई दरख्ते और झाड़ियों से बेनयाज थी। जाहिर है कि हमला बहुत ही ख़तरनाक था, मगर सब जवान हमले के लिए बेखुशी तैयार थे। हमला हुआ और कामयाब रहा। दो जवान मरे, चार जख्मी हुए। दुश्मन के तीन आदमी खेत रहे, बाकी रसद का कुछ सामान छोड़कर भाग निकले। सूबेदार रबनवाज और उसके जवान, उस बात का बड़ा दुख था कि दुश्मन का कोई जिंदा सिपाही उनसे हाथ न आया, जिसको वो खातिर गवा गालियाँ का मज़ा चखाते। मगर ये मोर्चा फतह करने से वो एक बड़ी अहम पहाड़ी पर काबिज हो गए। वायरलेस के ज़रिए सूबेदार रबनवाज ने प्लाटून कमांडर मेजर असलम को फौरन ही अपने हमले के इस नतीजे से इत्तला कर दी और उसने इसकी शाबाशी वसूल करी। करीब करीब हर पहाड़ी की चोटी पर पानी का एक तालाब सा होता था। इस पहाड़ी पर भी तालाब था, मगर दूसरी पहाड़ी के तालाबों के मुकाबले ये ज़्यादा बड़ा था। इसका पानी भी बहुत साफ और शफाफ था। गोमो सिम सख्त सर्द थी, मगर सब नहाए, दांत बजाते, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो कभी इस शगल में मशरूफ नहीं थे कि फायर की आवाज़ आई तो क्या करें। सब नंगे ही लेट गए। थोड़ी देर के बाद सूबेदार रबनवाज खां के दूरबीन से देखा तो नीचे ढलावनों पर नज़र दौड़ी, मगर उसे दुश्मन के छुपने की जगह पता न चली। उसने देखते देखते एक और फायर हुआ, दूसरी उतारी के फौरन बाद एक निस्बतान हुआ, दूर उतराई के फौरन बाद एक छोटी पहाड़ी की दाढ़ी से उस धुएं को उठता नजर आया। उसने फौरन ही अपने जवानों को फायर का हुक्म दिया। उधर से धड़ाधड़ फायर हुए, इधर से भी जवानों ने गोलियां चलाने लगी। सूबेदार रबनवाज ने दूरबीन से दुश्मन की पोजीशन बगैर मतलब की थी। वो गालिबन बड़े बड़े पत्थरों के पीछे मुहफ्फुज थे, मगर ये मुहफ्फुज दीवारें बहुत छोटी थी, ज़्यादा देर तक वो जमे नहीं रह सकते थे। इनमें से जो भी इधर उधर हटता उसको सूबेदार रबनवाज की जिद यकीनी था, वो मारा जाता। दोस्तों ये था आखिरी सैल्यूट का पार्ट वन, पार्ट टू जल्द ही हाजिर होगा, तब तक सब्सक्राइब करिए और सुनते रहिए creativeaudios.in।